ओम शांति। जो भी रिफ्रेश हो गए हो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस पैनल सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और पैनल के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। रिस्पेक्टेड पवन सेठी जी, मिस्टर रौनक खरबंदा जी, रिस्पेक्टेड नीलम ग्रोवर जी, रिस्पेक्टेड मनु भाई, रिस्पेक्टेड देवयानी चावली जी, आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ पल के लिए हम ईश्वर की सुमधुर स्मृति में बैठेंगे और फिर पैनल को शुरू करते हैं।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लौटाते चले।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे तो बोलों से
ईश्वर की, ईश्वर की पहचान बने। प्यार प्रभु का, लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का, लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले।
यह जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो इसकी थीम है एक्सप्लोरिंग द न्यू होराइजन, नए क्षितिज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल जो हमारा फर्स्ट इनॉग्रल सेशन था, तो सुदेश दीदी जी बात कर रहे थे। यह एक्सप्लोर जो हम कर रहे हैं, वह इनर वर्ल्ड को कर रहे हैं, आंतरिक जगत को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जीवन का एक और एस्पेक्ट, एक और एरिया को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और वो है रिलेशनशिप। तो आज के इस पैनल में आप सभी का और हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है, हमारी महफिल की जान है। तो सभी पैनलिस्ट का स्वागत और साथ में आप सभी का भी बहुत 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 स्वागत। रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो रिश्ते वो कड़ी है, वो एक सटल थ्रेड है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, चाहे फिर वो प्यार है, चाहे परिवार है या दोस्ती है। रिश्ते जीवन की वो नाव है जो हमें गहराई से जोड़कर रखते हैं, और उनमें भी विशेष हमारे शब्द कुछ रिश्तों को खास बना देते हैं। तो आइए इन पलों को और भी खास बनाते हैं। इस पैनल में सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को निवेदन करती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट का बैच और गुलदस्ते से स्वागत करेंगी ब्रह्मा कुमारी बहनें, और हम सभी तालियों के साथ इस स्वागत में शामिल होंगे। और साथ साथ आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारा भी गुलदस्ते के साथ और बैच के साथ स्वागत हो रहा है। तो क्या आप सभी यहाँ उपस्थित हैं? ये उपस्थिति आपकी हमें दर्शाती है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में इस कैंपस से जो ब्रह्मा कुमार भाई, जो हमारा मधुरवाणी ग्रुप है, वो हम सबका स्वागत करने आ रहा है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रह्मा कुमार बितेंद्र भाई और ब्रह्मा कुमार गोविंद भाई हमारे बीच में आएंगे और स्वागत गीत के द्वारा हम सभी का स्वागत करेंगे, और हम सभी तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं।
स्वागत और सम्मान करे हर समस्या का समाधान करे हम स्वागत और सम्मान करे अध्यात्म के रंगों में रंग कर पंखों में उमंगों को भर कर नए क्षितिज की ओर उड़ान भरे अध्यात्म में आत्म प्रकाश भरा है आशा और विश्वास भरा। परमात्मा प्रेम और प्यार भरा संभावना का संसार भरा। चलो राज योग का ध्यान धरे अंतर आनंद की खान भरे। चलो राज योग का ध्यान धरे अंतर आनंद की खान भरे। हर समस्या का समाधान करे हम स्वागत और सम्मान करे। अध्यात्म के रंगों में रंग कर दुनिया से अलग ही दुनिया है ये आप जहाँ पर आए हैं। आप सही समय पर सही दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। आपका है अपना ही घर हम अपनों का आह्वान करें। हर समस्या का समाधान करें हम स्वागत और सम्मान करें। नए क्षितिज की ओर उड़ान भरे के शिखरों पर आबू ये बड़ा मनोहर है। आध्यात्मिकता के रंग में रंगा ये प्यारा ज्ञान सरोवर है। पर्यटन परिवहन प्रभाग की सेवाओं का गुणगान करे। हर समस्या का समाधान करे हम स्वागत और सम्मान करे। नए क्षितिज की ओर उड़ान भरे नए जगत को हम प्रस्थान करे। नए क्षितिज की ओर उड़ान भरे नए जगत को हम प्रस्थान करे। अध्यात्म के रंगों में रंग कर पंखों में उमंगों को भर कर हर समस्या का समाधान करे। हम स्वागत और सम्मान करे हर समस्या का समाधान करे। हम स्वागत और सम्मान करे नए क्षितिज की ओर उड़ान भरे।
बहुत 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 सुंदर आपने आज का जो हमारा पैनल है उसका सार अपने गीत के अंदर हमें बता दिया और इस हॉल की एनर्जी को और भी आपने पॉजिटिव कर दिया। इस रो में जो भाई बहन बैठे हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट है बीच के रो में आकर बैठे तो बहुत अच्छा लगेगा और जो पीछे इस तरफ लेफ्ट के रो में बैठे वो भी कृपया बीच में आए तो बहुत अच्छा लगेगा और ये हॉल की शोभा होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज बीच में आए। आज का यह जो पैनल का विषय है बहुत सुंदर विषय है मैजिकल फॉर्मूला ऑफ रिलेशनशिप। हर व्यक्ति जीवन के अंदर हर एरिया में जो वैल्यूज को फील करना चाहता है और वो हर वैल्यूज को हम फील कर पाती है रिलेशनशिप के आधार पर। इसीलिए रिलेशनशिप इस जीवन यात्रा में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और हम सभी इसके अनुभवी भी हैं और साथ साथ जीवन के हर मोड़ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए आज के इस विषय को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट पैनलिस्ट रिस्पेक्टेड रौनक करबंदा जी को पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी इस विषय में। रिस्पेक्टेड रौनक करबंदा जी 18 इयर्स से एयर इंडिया से जुड़े हुए हैं एज सीनियर कमांडेंट। आपका लंबा समय का ये अनुभव है, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि रिलेशनशिप का कॉरपोरेट सेक्टर में क्या रोल है, या इन अदर वर्ड्स व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पेक्टेड रौनक जी।
ओम शांति ब्रह्म कुमार के बहनों और भाइयों। रिलेशनशिप का कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत बहुत योगदान है। हम इसको एक और वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है टीम वर्क। और मैं जैसे एयर इंडिया में पायलट हूँ, तो हमें कंपनी रिसोर्स मैनेजमेंट करके टीम वर्क की एक्सरसाइज या क्लास कराई जाती है हर साल। वो क्लास में हमें यही बताया जाता है कि आपकी रिलेशनशिप सिर्फ आपके फैमिली के साथ नहीं, आपके कॉकपिट में कोलीग के साथ नहीं, हर एक उस एम्प्लॉई से है कंपनी के, जो छोटे से छोटा कार्य करके आपकी यात्रा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सक्सेसफुली पहुंच पा रहे हैं। वो शुरू होती है आपके कार के ड्राइवर के साथ, जो आपको गाड़ी घर पे लेने आती है। उसके बाद आप एयरपोर्ट जाते हैं, जो आपका चेक इन करते हैं सामान वो, फिर आपको जो रास्ते की ब्रीफिंग करते हैं वो, जो आपके कागज, जो आपका फ्यूलिंग करते हैं वो, जो इंजीनियर आपके हवाई जहाज का संतुलन बताते हैं वो। इसलिए बहुत जरूरी है कि एज कॉर्पोरेट सेक्टर में एज अ टीम आपको बहुत काम होके, बहुत कंपोज्ड होके आपको टीम वर्क के साथ काम करना है। अब हमें ये क्लास में ये भी बताया जाता है कि ये इतना जितना आसान है ये बोलना, वो उतना आसान प्रैक्टिकली करना नहीं है, क्योंकि हर जने के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, कुछ सिचुएशन हो रही होती है, कुछ घर पे कुछ गंभीर स्थिति हो सकती है या दोस्त के साथ कुछ गंभीर स्थिति हो सकती है। इसीलिए हमें यही बताया जाता है कि हम रेगुलरली मेडिटेट करें, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएं, एक्सरसाइज करें, ताकि जो भी हमारी इंटरनल भावनाएं हैं उस पर हम काबू ला सकें और अपना कार्य अच्छे से अच्छा और शांति से कर सकें। थैंक यू।
बहुत सुंदर। आपने जिन वैल्यूज की टीम वर्क की बात की, सच में हर कॉरपोरेट सेक्टर में, हर कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग के बीच में इन बातों को बढ़ावा दिया जाता है, सिखाया भी जाता है। और जो भी स्टाफ होता है वो स्टाफ भी कई परसेंटेज में इन बातों को फॉलो अवश्य करती है और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करती है। इसी से कनेक्टेड मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूंगी हमारे दूसरे पैनलिस्ट मनु भाई जी से। आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, परंतु शिपिंग सेक्टर के अंदर आपका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने एक जापानीज कंपनीज में 25 इयर्स सेवाएं दी है और रिसेंटली सिंस 12 इयर्स आप शिपिंग कंपनी के ओनर भी है, शिपिंग कंसल्टेंसी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में क्या स्पिरिचुअलिटी का कुछ बेनिफिट हो सकता है रिस्पेक्टेड मनो भाई?
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जैसी बहन जी ने पूछा कि स्पिरिचुअलिज्म को कैसे हम कॉरपोरेट सेक्टर में भी, बिकॉज मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता हूं, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो जो बोल रहा हूं वो एक्सपेरिमेंट के साथ है। पहले भी करता था, 5 साल पहले भी करता था रिलेशनशिप, यू नो वर्किंग, तो वो अपने कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से करता था। ईश्वर की नॉलेज कंप्लीट नहीं थी। जब किसी कंप्लीट ज्ञान के साथ हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो हर चीज वो विधि के साथ काम होता है, और विधि के साथ जो है वो निष्कर्ष जो निकलता है वो हमेशा सही और पॉजिटिव निकलता है, जैसा निकलना चाहिए। मलाई को रिड़केंगे तो मक्खन निकलेगा, एक प्रोसेस है। तो वैसे ही अगर विधि सही रही तो निष्कर्ष भी सही निकलता है। तो पहले तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से कि ठीक है करना है, पर जब ईश्वर को पहचाना तो ईश्वर को पहचान कर हर संबंध उसके साथ स्थापित करके, अगर हम किसी रिलेशन को अगर हम जीते हैं या उसको यूज करते हैं, क्योंकि क्या सीखा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, दोनों मिक्सचर पड़े हैं। लोगों की मत पड़ी है, स्वयं की मत पड़ी है, थोड़ी भगवान की भी मत पड़ी है, कुछ स्क्रिप्चर्स की मत पड़ी है, तो सो मिला मिला जुला रिजल्ट आता है। जब हम वही रिलेशनशिप, जैसे दोस्त का कहते हैं ना, भगवान पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, तो जब हम एक एक रिलेशनशिप को अगर उसके साथ जोड़कर उसके बाद हम उस रिलेशन को जिए, तब क्या होता है। दैट इज व्हाट मैं कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। तब क्या किया हमने अपने ही ऑफिस में, द वे हम रिलेशनशिप में आते एक दूसरे के साथ काम के तौर पे या बंधु के तौर पे, दोस्त के तौर पे, तो पहले भगवान के साथ ही रिलेशन बनाया। तो भगवान के साथ जब रिलेशन बना तो कुछ ऐसी चीजें पता लगती हैं जो पहले मत में नहीं आती हैं। तो क्या होता, बुद्धि पूरी रिफाइन हो जाती है। तो बुद्धि रिफाइन जब हो गई तो उस रिलेशन को जीना और आसान हो गया। जब उसको यूज किया जीवन में तो उसका जो रिजल्ट निकला कि ऑफिस में अगर मैंने देखा, जैसे कहते ना कि किसी बात को इमीडिएटली अगर हम किसी को बोलें तो वो रिलेशन कामयाब नहीं होता है। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, बट कहते ना करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो वही है कि जब हम बार 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 हम तो पॉजिटिव दे रहे हैं, हम तो पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, तो जब हम करते रहते हैं तो अगले में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू होता है। और फिर उसको अपने आप बोलने की जरूरत नहीं होती है, साइलेंस में सारा काम, साइलेंस में हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका ही बोल अलग हो जाता है। वही रिलेशनशिप अगर थोड़ा सा कटु हो या कहीं पे एग्रेसिव हो तो वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाता है। ये देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। और यही नहीं, फिर हम अगर कुछ गलत भी कर देते हैं तो भी वो उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये व्यक्ति नॉर्मल बात नहीं बोल रहा है। और ये जादू जादू की तरह काम करता है, मैजिकल वे इट वर्क्स। तो अगर हम भगवान के साथ अपने संबंधों को पहले जोड़कर उस रिलेशन को अगर जी लें और उसके बाद अगर हम उसको बर्ताव में लाएं, बर्तन में लाएं, व्यवहार में लाएं, तो उसका जो निष्कर्ष है वो बहुत पॉजिटिव और सदा सटीक और फायदेमंद होता है। उसमें नुकसान कहीं नहीं होता है। किसी से कोई युद्ध नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, किसी से कुछ नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं, होने के बावजूद भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या ना करें, लोगों के दिल में आप बस जाते हो, और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। तो दिस वर्क्स विद स्पिरिचुअलिज्म, डेफिनेटली वर्क्स मच बेटर, बिकॉज जब हम जोड़ते हैं अपने भगवान को, उस रिश्ते को जीते हैं। भगवान क्या है, एब्सोल्यूट है, उससे ज्यादा प्योर कोई नहीं है। वो ज्ञान का सागर, वो करुणा का सागर, वो प्रेम का सागर, वो आनंद का सागर, सब कुछ है, वो सागर है। तो जैसे कनेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली एनर्जी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, हम तो लो पोटेंशियल पे हैं, वो हाई पोटेंशियल पे है, तो ऑटोमेटिकली सारी एनर्जी सही चीजें हमारे अंदर घुस जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिज्म का बहुत महत्व है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से निभाने के लिए। इसको आप भी ट्राई करके देखें, इट वर्क्स वंडरफुली एंड मैजिकली। ओम शांति।
थैंक यू सो मच मनुभाई जी। एक और बात मनुभाई जी के बारे में हम बताना चाहेंगे, आज का ये जो पैनल है वो हमारा इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि रिस्पेक्टेड मनुभाई जी सिंगापुर में कार्य करती हैं और इसीलिए आज का ये पैनल विशेष भी है। और हम सब भारतवासी जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में जब स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करना है तो थोड़ा टफ ही होगा, और आप वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं और आपका अपना अनुभव भी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक विशेष हस्ती को हमारे बीच में प्रश्न पूछना चाहेंगे, रिस्पेक्टेड नीलम ग्रोवर जी, अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका भी लंबे समय का अपने फील्ड का अनुभव है, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा टेक्निक या टूल यूज किया है जो प्रोफेशनल रिलेशन में अच्छा या बैलेंस लाइफ बनाए रखने में मददगार है, ऐसा कोई अपना अनुभव शेयर करें।
ओम शांति। मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जैसे मैं ये समझती थी कि जैसे जिस तरह से हम हमारे माता पिता के बच्चे हैं, तो हम हमारे भाई बहन के साथ जिस तरह से रिलेशंस रखते हैं एकदम कॉर्डियल, और कुछ भी उनकी कमी कमजोरी होती है तो भी हमें उनके ऊपर कुछ ऐसे फील नहीं होता कि कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है। इसी तरह से जब मैं इस नॉलेज में आई तो जो मुझे पता चला कि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे 4-5 लोगों से अपने संबंध को अच्छा रखना है, लेकिन जब मुझे ये समझ आई कि परमात्मा का ये जो नॉलेज मिली कि सभी सोल्स हैं और सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और हम आपस में ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, तो ये नॉलेज से मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरे ऑफिस में कभी भी किसी से कभी भी कोई रिफ्ट नहीं हुआ जब से मैं इस नॉलेज में आई। तकरीबन 25 ईयर्स हो गए हैं, कभी किसी से कभी उलझन नहीं हुई, कोई सवाल नहीं पैदा हुआ, क्योंकि मैं उसी समय हर आत्मा को यही सोचती थी ये मेरे ब्रदर हैं, ये मेरी सिस्टर है, तो मुझे यही सोचती थी कि ये आत्मा भी भगवान की क्रिएशन है, इसमें अगर कोई वीकनेस है तो उसको दूर करना मेरा फर्ज है, मैं उसको ये प्यार से बताती हूँ। तो मेरी किसी से भी कभी भी टच वुड है कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसी तरह से प्रेजेंटली भी मेरे ऑफिस में सब लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे से रहते हैं, कभी किसी से कोई वो नहीं होती है। अगर किसी को एक दूसरे से हो भी रही है तो मैं उनको उस नॉलेज के तहत बता देती हूँ कि भाई नहीं, ये भी एक आत्मा ही है, इसमें इसमें भी आप गुण देखो। उन सबको मैंने ये सिखाया कि आप इसमें कमी मत ढूंढो, इसके गुण देखो, जिस तरह से भाई जी ने अभी सुबह भी बताया हमें कि हमें गुणों को देखने की आदत डालनी चाहिए। तो जब हम उनके गुण देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी नहीं और रिलेशन हमेशा अच्छे ही रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
थैंक यू। आपने शॉर्ट शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर यह शेयर किया, और हम सब जानते हैं कल से लेकर के आप जो यहाँ सुन रहे हैं कि जीवन के हर फील्ड में जो भी रिलेशंस है हमारे, उन सभी रिलेशंस के लिए स्पिरिचुअलिटी एक सॉलिड बेस के रूप में काम करती है। तो अब हम चलते हैं एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 6 दशकों से इस स्पिरिचुअल जर्नी को अनुभव किया है और आज हम सबके बीच में वो एक आदर्श या फिर एक पिलर की तरह है, जिनको देख देख कर हम सीखते आ रहे हैं, ऐसे आदरणीय रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आदरणीय राजयोगिनी मीरा दीदी जी। कल हम सब ने मीरा दीदी जी को सुना भी है। आज दीदी जी से हमारा ये प्रश्न है कि दीदी जी, एक एस्पेक्ट नहीं, जीवन अर्थात हमें फैमिली को भी देखना है, हमें अपने वर्क प्लेस पर भी देखना है, हमें अपनी सोशल लाइफ भी जीनी है। तो जीवन के हर एरिया में हर रिलेशन हमारा हार्मोनियस बना रहे, तो आप अपने अनुभव के आधार पर हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो जीवन का हर एरिया सुगंधित हो और संबंध सुमधुर हो। आदरणीय मीरा दीदी।
ओम शांति। उज्ज्वला बहन जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हम सभी एक अकेले तो कोई भी नहीं रहते, हर एक के साथ अपना परिवार है और हर एक का अपनी अपनी रीति से वर्क प्लेस भी है। यहां भी रिलेशन है, ऑफिस में भी रिलेशन है। रिलेशन में हमें मुख्य बात हमेशा ये ध्यान में रखनी है कि मैं स्वयं, मेरा माइंड पॉजिटिव फ्रेमवर्क का हमेशा रखूं। मेरा किसी के भी साथ रिलेशन कोई भी कारण हो लेकिन स्पॉइल ना हो। जब कोई भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है, मन मुटाव हो जाता है, तो हमें ये समझना है कि ये रिलेशन में किसी के भी साथ कड़वाहट जो है, खटास जो है, ये मेरे स्वयं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मेरा इस प्रकार से मन मुटाव है तो हम स्वयं बहुत ही बोझ महसूस करते हैं और हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा लाइट रहना चाहिए। हम लाइट रहते हैं तो उससे हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि ये जीवन एक यात्रा है, लाइफ इज शॉर्ट। जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, शिप्स में बैठते हैं, दूसरे भी पैसेंजर्स हमारे साथ होते हैं, तो कभी लड़ाई झगड़ा, जरा भी लड़ाई झगड़ा करने का हमें ख्याल नहीं आता। नेक्स्ट उतर जाना है उसको, थोड़े समय के लिए सभी मिले हुए हैं। तो ये लाइफ की बात है कि थोड़े वर्षों के लिए हम सभी आपस में मिले हुए हैं और उसमें भी हम जिंदगी को और शॉर्ट बना दें मन मुटाव करके, रिलेशन बिगाड़ करके। अब सोचिए कि ऐसी हमारी अगर लाइफ होती है तो कितनी नीरस बन जाएंगी, ये लाइफ कैसी हो जाएंगी, उसमें खुशी रहेंगी, हमें प्रेम रहेगा आपस में, प्रसन्नता हमारी रहेगी। और जीवन में प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये तो हर एक को पसंद है। जिसे हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ प्रेम से व्यवहार करें, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी औरों के साथ जो हम चाहते हैं वही उचित रीति से, राइट वे में, प्रॉपर वे में हम भी दूसरों के साथ व्यवहार करें। और आप सभी को यह अनुभव होगा कि जब किसी के साथ रिलेशन बिगड़ता है तो उसके बारे में कितना मन के अंदर नाराजगी होती है, और नाराजगी के साथ साथ कितने नेगेटिव विचार उसके बारे में आते हैं, हमारा माइंड कितना ऑक्यूपाई रहता है। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि हमारा बहुत सुंदर महल जैसा बिल्डिंग है, मकान है, हमने उसमें रेंट पर किसी को दिया हुआ है और वो हमें रेंट देता ही नहीं है। अर्थात अननेसेसरीली हम अपने माइंड के अंदर ऐसे वैसे लोगों को बिठा करके रखते हैं जिसके साथ मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, तो नुकसान किसका हुआ? सामने वाले के पहले, सबसे पहले प्रथम हमारा ही स्वयं का जो नुकसान है वो बहुत हो जाता है। और ये रिलेशन बनने में एक दिन में नहीं बनता, काफी समय लगता है, और टूटने में एक दिन लग जाता। ये जो धागा है स्नेह का, ये धागा रिलेशन का, कहा जाता है कि बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही पतला धागा है, इसे कभी भी हमें कोई भी वश, कोई बात के वश होकर के कोई भी कारण से हमें तोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो कोऑपरेशन हमें हर कार्य में आप देखेंगे कि बहुत सुंदर रीति से मिलता है, यहां तक कि किसी की लाइफ भी बच जाती है। थोड़े साल पहले एक सत्य घटना आई थी, इंडस्ट्री में एक इंजीनियर कार्य कर रहा था, जॉब कर रहा था, और वहां पर मशीन के साथ उसका कार्य था। वो वॉचमैन सिक्योरिटी में जो था उसको रोज हेलो करता था और स्माइल देता था, और कुछ नहीं, स्माइल देता था उसको, और इतना अच्छी तरह से फिर वो एंट्री अंदर करता था। ऐसे करके उसके रिलेशन बहुत अच्छे उसके साथ हो गए स्माइल से ही। एक दिन क्या हुआ कि सारे चले गए थे, वो अकेला उसमें कार्य कर रहा था, और कुछ मशीन में ऐसा हुआ जो वो गिर गया, और एक दो घंटे ज्यादा हो गए। वो जो सिक्योरिटी वाला था जिसको वो रोज स्माइल देता था, हेलो करता था, उसने उस दिन सोचा कि आज ये इंजीनियर, ये व्यक्ति आज आया नहीं है, अभी तक ऑफिस से या फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से ये बाहर नहीं निकला है। बहुत उसने सोचा, फिर उसने इंक्वायरी किया, अंदर गया वो और देखा तो वो व्यक्ति जो है वो नीचे गिरा हुआ था। अगर वो सारी रात रहता था, फिर वो तुरंत उसको लेकर के गया और सब प्रबंध उसने किया। अगर डॉक्टर ने कहा कि अगर ये सारी रात, नेक्स्ट डे ओपन हो तब तक ये अगर अंदर रहता था तो इसकी लाइफ कभी नहीं बचती थी। तो आप सोचिए कि किसी से भी रिलेशन अच्छा रखने में हमें अपने स्वयं के जीवन में कितना बेनिफिट हमें होता है। पर ऐसी ड्राई लाइफ हम क्यों व्यतीत करें, ऐसा क्या कारण है? हम अहम में नहीं आए, रिश्ते स्पॉइल होने का कारण होता है अहम, ईगो अपना। कहीं ना कहीं ईगो इतना सूक्ष्म होता है और इतना डीपली रूटेड होता है कि कभी कभी खुद को भी ये समझ में नहीं आता है, रियलाइज नहीं होता है, वो रियलाइजेशन नहीं होता, और उसके कारण अपने को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो ये बेसिक बात है कि अहम में कभी नहीं आना है। और उसके साथ दूसरी बात है बहुत महत्व की कि वहम में भी हमें कभी नहीं आना है। जब हम किसी के बारे में डाउट पैदा करते हैं अपने मन के अंदर बिना कोई कारण, बात ऐसी होती नहीं है, और फिर भी हम वहम करते हैं, डाउट उसके ऊपर करते हैं, शंका उसके ऊपर करते हैं, इसने ऐसा अनुमान करते हैं, इसने मेरे लिए, इसने ही ऐसा कहा होगा, उसने ही ऐसा कहा होगा, तो वो हम छोड़ दे, उससे हम मुक्त हो जाए तो हमारा रिलेशन सभी के साथ बहुत हमेशा ही स्वीट रहेगा। एक बार न्यूज़पेपर में ग्लोबल सर्वे के बारे में आया था कि टेंशन व्यक्ति को किस बात में होता है ज्यादा सबसे, तो उसमें ग्लोबल सर्वे में ये बात आई कि सबसे ज्यादा टेंशन होता है जब रिलेशन व्यक्ति के बिगड़ते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान पे रखनी है। उसमें विशेष लिखा था कि धन मनी के कारण टेंशन इतना नहीं होता व्यक्ति का, लेकिन अगर संबंध में ही बिगाड़ हो गया तो जरूर उसको बहुत ज्यादा परसेंटेज में तनाव पैदा हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि तनाव से तो कितनी सारी बीमारियां होती हैं, तो इसलिए इस सारी बातों से, इन सारी बातों से हमें अपने आप को हमेशा ही फ्री रखना है। वो हमारे ही स्वयं के फायदे में है कि मैं रिश्ते में माधुर्यता और वैल्यूज, ये जो मूल्य है वो कभी मधुरता का, स्वीट रिलेशन का, वो मैं कभी मिस न करूं, मैं कभी खोऊं नहीं। ओम शांति।
बहुत 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 सुंदर दीदी जी का, क्योंकि इतने वर्षों का अनुभव है और उनके अपने एक्सपेरिमेंट तो है ही है, पर मुंबई में आप सेवाएं देते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी भाई बहनें आते हैं तो उन भाई बहनों के अनुभव के आधार से आपने हम सबके साथ ये अनुभव शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा अगला प्रश्न है आदरणीय देवयानी मैडम से। आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम विशाखापट्टनम से आए हैं और आपका अपने फील्ड में 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपसे एक बहुत सुंदर प्रश्न हम पूछना चाहते हैं जो आप सभी को भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा। आपके जीवन में कौन सा रिश्ता इंपॉर्टेंट है और क्यों?
ओम शांति। मंच पर आसीत और हाल में बैठे भाई बहने सभी को मेरा नमस्कार। जिंदगी में रिश्तों का मूल्यता, मेरे ख्याल से जिंदगी में, जिंदगी एक रिश्तों का गुलदस्ता है। क्या क्या रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, जिंदगी चलती है रिश्तों के साथ। बचपन में खेलकूद करे बनी दोस्ती का रिश्ता, कॉलेज आ पहुंचे बनी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का रिश्ता, नौकरी मिली ऑफिस में बैठे हायर ऑफिसर को टाल नहीं सकती और अंडर ऑफिसर को सुना नहीं सकती, बनी रेस्पेक्टेबल रिश्ता अमंग ऑफिसर्स। शादी करा दी आ पहुंची ससुराल, वहां पता चला मेरे सासू माँ भी शिव बाबा के ज्ञान है परसों से। तो बनी सासू माँ और मेरा माँ बेटे की रिश्ता। सुबह में कामकाज करना, ऑफिस चले जाना, फिर शाम में आ जाना। सुनने लगी मुरली अपनी सासू माँ के मुंह से, सुनते सुनते आ पहुंचे सेंटर। तो बनी मेरा शिव बाबा के साथ रिश्ता अमूल्य है, अमूल्य ही रहेगा जिंदगी में। रिश्ता एक अमूल्य रिश्ता है, अनमोल है रिश्ता, इसको संभाल के रखो। कट जाते दिन यूं ही खुशी खुशी। ओम शांति।
आपने हाईएस्ट रिश्ते की बात की और इस जीवन यात्रा में बचपन से लेकर के कौन कौन से रिश्तों से हम गुजरते हैं और लास्टली हम ईश्वर को अवश्य याद करते हैं और ईश्वर के साथ जो रिश्ता है वो अमूल्य है, वो हम सब जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा में रिश्तों के बीच में जब दरार आती है तो उसका असर हमारे फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर अवश्य पड़ता है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी रिस्पेक्टेड पवन सेट्टी सर से। पवन सेट्टी सर हमारे बीच में है पंजाब से। आप अल्पाइन प्लाजा होटल के ओनर है, साथ साथ लैब फर्निशर्स इंडिया कंपनी के भी ओनर है और 95 से लेकर के आप अपने क्षेत्र में कार्यरत है। सर आपसे एक विशिष्ट प्रश्न है। वर्क लाइफ बैलेंस ना होने से रिलेशनशिप सफर करती है, इसके लिए आप पर्सनल लेवल पर क्या उपाय करते हैं?
ओम शांति। सबसे पहले मैं मंच में बैठे सभी का आदरणीय धन्यवाद करता हूँ। मैं पता नहीं इस लाइक भी हूँ आज, बहुत बाबा की कृपा से मैं इस स्थान पे आज बैठा हूँ। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद करता हूँ। बहन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके अंदर लाइफ को रिलेशनशिप जो है, चाहे वो घर है चाहे वो हमारा कार्यस्थान है, अगर रिलेशन घर पे ठीक नहीं है तो घर में शांति नहीं है। सबसे पहले जो हमारे को घर पे रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए, और जैसे मीरा बहन जी ने बोला कि ईगो और वहम जो मुख्य कारण होते हैं घर पे रिलेशनशिप को खराब करने के, उसको हमारे को सबसे पहले दोनों जो भावनाएं हैं ईगो और वहम, अगर हम लोगों के बीच में नहीं होंगे तो हमारा रिलेशन अपने आप बहुत अच्छा बनेगा, चाहे वो घर है चाहे वो कार्यस्थान है। कार्यस्थान में भी जो है हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ हमारे को बिना भेदभाव के रिश्ते को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयी है उसका अपने वैल्यू है और अपना अपना स्थान है। एक भी अगर नीचे से एम्प्लॉयी हमारा प्रॉब्लम करता है तो हमारी पूरी बिल्डिंग जो है वो सारी गिरने के उस पे होती है। तो हमारा फोकस हमेशा यही रहता है कि हम सबके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बना के रखें, और ईगोइस्टिक जो है ईगो बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। हम हमेशा अपने एम्प्लॉयज को जो मंथली मीटिंग होती है उसमें हमेशा यही एक बोलते हैं कि भी ईगो, कोई भी बात है तो आप सामने आके अपने सीनियर से बात करिए, ताकि जो ये हमारा परिवार है ये एक परिवार की तरह होता है। होटल इंडस्ट्रीज है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके अंदर भी इम्प्लॉयज हैं, तो वो सब परिवार की तरह होते हैं हम लोग। एक भी परिवार खराब होगा तो रिलेशन खराब होगा, तो उसमें अफेक्टेड सारा परिवार होता है, चाहे वो घर है, चाहे वो होटल है, चाहे कोई भी बिजनेस है किसी का भी। तो मेरे हिसाब से जो बहन मीरा जी ने बोला है, ये दो जो है बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ईगो और वहम। जिस भी लाइफ में अगर ये आएंगे वहां पर रिलेशन के खराब होने के चांस हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा वो है कि अगर हम इनको दूर करेंगे तो अगर रिलेशन अच्छे हैं तो हमारी लाइफ अच्छी है, और लाइफ अच्छी है तो जो जर्नी के लिए हम आए हैं, जितने भी समय के लिए आए हैं, उसको हमारे को अच्छे से लाइट वेव करके व्यतीत करना चाहिए। ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक्स पवन सेठी जी का। आप सभी पैनलिस्ट से जो एक्सपीरियंस हम सभी सुन रहे हैं, उससे एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि कल से लेकर के हम कुछ वैल्यूज की बात सुन रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज की बात सुन रहे हैं। तो ये नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की बातें, चाहे वैल्यूज या पावर के रूप में, हम यदि जीवन में अपनाएं तो हो सकता है कि हमारे हर रिलेशन बहुत अच्छे हो सकती है। तो अभी मेरा अगला प्रश्न आदरणीय प्रभा दीदी जी से है। दीदी जी, कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छा सबके साथ बर्ताव करती हैं और सबके लिए वेलविशर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और अपनी ओर से अच्छा रहने का ट्राई भी बहुत करती हैं, पर कभी कभी सामने वाले का उतना रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं होता है, तो उस समय भी रिलेशनशिप में दरारें रहती है। या यू कहे कि हम जितना अच्छा रिलेशन बनाना चाहे वैसा नहीं बना पाते हैं। तो आध्यात्मिकता की कौन सी ऐसी बातों को हम जीवन में अपनाएं, या हमारे डेली रूटीन में हम क्या चेंजेस लाएं, और हम अपने इनर स्ट्रेंथ को आध्यात्मिक रीति से कैसे स्ट्रेंथन करें, आप उसके टिप्स बताएं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन हमारे सभी साथी, सभा में सभी हमारे विशेष शिव पिता परमात्मा की संतान भाइयों तथा बहनों, आज का विषय बहुत सुंदर है और मैं सुन रही थी। विशेष हम ये कहेंगे कि मनुष्य आत्मा एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, और समाज जो बनता है वो एक से नहीं बनता है, एक दूसरे के साथ जब साथी बनते हैं तब समाज बनता है। जैसे फैमिली है तो फैमिली में अकेला नहीं होता है, फैमिली के साथ और भी व्यक्ति रिलेशन में जुड़े हुए होते हैं, और जब रिलेशन में जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ रिलेशन को निभाना होता है, और रिलेशन को निभाने के लिए कभी कभी रिलेशनों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, और जिसके कारण जो रिलेशन में मनुष्य को सुख और शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो जो दरारें पड़ने का कारण भी होता है उसमें, एक तो हम यही कहेंगे सबसे बड़ा कारण स्वार्थ होता है, और स्वार्थ भी क्यों आता है? क्योंकि जब व्यक्ति विशेष स्वयं को नहीं जानता है और साथ साथ स्वयं कौन है, उसका कर्तव्य क्या है, इस संसार में किस लिए आया है, और अगर ये बुद्धि में है कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, अगर हम अपने कर्तव्य को जानते तो जरूर हम अपने कर्तव्य को करेंगे। अगर मैंने लक्ष्य लिया है तो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कई हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, कई प्रकार के पेपर आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती है, लेकिन अगर हमने अपने लक्ष्य को पकड़ के रखा है तो हम उन सब को साइड कर लेते हैं। जैसे देखो, हम ये तय करते हैं कि हमको अपनी मंजिल पर पहुंचना है और हमारी मंजिल वो है, तो मंजिल पर जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए यात्रा में होते हैं तो यात्रा करते समय पर कई बार कई साइट सीन्स आते हैं, और उन साइट सीन्स को देखते हुए भी हम उन साइट सीन्स के अंदर रुक नहीं जाते हैं, लेकिन उनको देखते हुए भी हम अपनी मंजिल के पास पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, और जब हमारा लक्ष्य होता है तभी हम उस मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं। अगर हम साइट सीन देखने में ही लग जाएंगे तो जो हमारी मंजिल है उसके ऊपर हम पहुंच नहीं सकते। तो जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें कैसी भी परिस्थिति आती है उनको फेस करना होता है, और जब हमारा लक्ष्य होता है कि हमको ये फेस करना है तो अगर लक्ष्य टाइट है तो हम जरूर उन जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को फेस करने से हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अब लक्ष्य को टाइट कैसे करना है उसके लिए भी हम देखते हैं कि आत्मा के अंदर वो विल पावर चाहिए, और जब विल पावर होती है, स्ट्रांग विल पावर होती है, तभी वो परिस्थितियों को पास करते हुए अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी कई परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को पास करने के लिए हमारे पास भी विल पावर चाहिए, और जब वो विल पावर आती है तभी हम अपने जीवन की यात्रा को भी सहज रीति से कर सकते हैं और सहज हम पहुंच सकते हैं। तो जीवन की यात्रा को तय करने के लिए हमें विशेष जो अपने जीवन में स्ट्रांग बनाना है या विल पावर लानी है उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कहा ना वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज के लिए भी वैल्यूज कैसे आएंगी, संबंधों में सुधार करने के लिए वैल्यू चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। तो वो समाने और सहन करने की शक्तियां कैसे आएंगी, जब विल पावर होगी तभी हमारे अंदर वैल्यूज भी आती हैं, और वो वैल्यूज के आधार पर ही हम अपने संबंधों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज जो संबंधों के अंदर श्रेष्ठता नहीं रही है उसका मूल कारण यही होता है कि हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम विशेष अपने जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। और उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हैं उनके अंदर जो विल पावर चाहिए स्ट्रांग, वो पावर न होने के कारण उन वैल्यूज को हम अपने जीवन में यूज नहीं कर सकते, और जब यूज नहीं कर सकते तो हम सफल नहीं हो सकते। तो जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने जीवन में वैल्यूज को धारण करना है, और वैल्यूज किस आधार पर मिलेंगी, वो विशेष वैल्यूज जो है वो हम राजयोग के आधार से अपने जीवन में उन वैल्यूज को ला सकते हैं। क्योंकि आत्मा जो है हमारी विशेष जो शक्तिहीन हो चुकी है, उस आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ये राजयोगा मेडिटेशन है, जिस मेडिटेशन के आधार से ही हम आत्मा के अंदर वो शक्तियां भर सकते हैं, और उन शक्तियों को भर करके हम अपने जीवन को सहज और बना सकते हैं, संबंधों को सहज बना सकते हैं। परमपिता परमात्मा जो है वो भी इस धरा पर जब आते हैं तो हमारे साथ संबंध जोड़ते हैं। क्योंकि संबंध ही हमारा उस परमात्मा से होता है, तो परमात्मा से संबंध हमारा क्या है? हमारा संबंध परमात्मा से, वो हमारे पिता हैं, हम सब उनकी संतान हैं, तो हम सब आत्माएं आपस में क्या कहें? वैसे भी कह देते हैं आत्मा भाई भाई है, लेकिन कौन भाई भाई समझते? भाई भाई है तो हमारा प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन वो प्यार कहाँ हो गया? क्योंकि हम अपने संबंधों को भूल गए हैं। तो परमात्मा हमारे साथ विशेष ये संबंध की स्मृति दिलाते हैं कि परमात्मा हमारे पिता हैं और हम सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतानें हैं, और हम सब पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी आत्माएं भाई भाई, और शारीरिक नाते में हम सभी आत्माएं भाई बहन हैं, और भाई बहन हैं तो नेचुरल जब हम भाई बहन हैं तो उसका हमारा आपस में कितना प्यार होता है। लौकिक में भी देखते हैं भाई बहन का संबंध अटूट होता है और उसमें विशेष स्नेह होता है, तो हम सभी भी विशेष उस पिता परमात्मा की विशेष संतानें हैं, और संतान होने के नाते हमारा आपस में वो स्नेह होगा, जहाँ स्नेह होगा वहाँ संबंध श्रेष्ठ होगा, और जहाँ स्नेह नहीं है वहाँ संबंध बिगड़ते हैं। तो संबंधों को सुधारने के लिए हमें अपने जीवन में स्नेह को स्थान देना होगा। कहते हैं ना, जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। प्यार में इंसान मार भी सहन कर लेता है, प्यार में कैसी भी परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति को प्यार करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा परमात्मा से भी प्यार, और साथ साथ जिनके साथ हमारा संबंध है, व्यवहार है, उन सब से भी हम प्यार से अगर अपने व्यवहार को करेंगे तो हम जरूर अपने संबंधों को श्रेष्ठ बना सकेंगे। परमात्मा हमें विशेष यही यहाँ पर सिखा रही है। ओम शांति।
बहुत बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल शब्दों में दीदी जी ने हमें गाइड किया, अर्थात रिलेशनशिप के लिए हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है, वो निभाना है, तो हमारे अन्य रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब मैं आदरणीय मीरा दीदी जी से एक बहुत प्रैक्टिकल और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछना चाहती हूँ। दीदी जी, हमारे तीन सेक्टर है, शिपिंग, एविएशन, टूरिज्म, तो तीनों ट्रैवल सेक्टर हैं, और जहाँ पर एविएशन की बात है तो एविएशन में भी लास्ट मोमेंट बहुत कुछ चेंजेस होती रहती है, शिपिंग सेक्टर में भी होती है, और जहाँ टूरिज्म की बात है तो टूरिज्म में भी एक स्पॉट से दूसरे स्थान पर जाना होता है, टूरिज्म भी बहुत बड़ा सेक्टर है, और जीवन में भी कई बार लास्ट मिनट कुछ चेंजेस को फेस करना पड़ता है जो हमारी पहले से प्रिपरेशन नहीं है, मेंटल प्रिपरेशन। तो ऐसे सिचुएशन में काम कंपोज कैसे रहे और कोऑपरेटिव कैसे बने रहे? प्लीज गाइड अस।
ओम शांति। जब उज्ज्वला बेन जी पूछ रहे थे तो मुझे याद आया, एक दृश्य मेरे नजर के सामने आया कि एयरपोर्ट के ऊपर एक बार कुछ फ्लाइट लेट हो गई तो थोड़े से लोगों ने, चार पांच लोगों ने जाकर के जो काउंटर पे वहां पर लास्ट में जो अंदर एंट्री कराते हैं तो उनके ऊपर इतना क्रोध किया, वो एकदम शांत, वो एक शब्द न बोले। लेकिन एक सोचने की बात है कि फ्लाइट लेट हुई, उसमें वहां पर जो है वो तो टीम वर्क में सारा कार्य हो रहा है, वहां पर उनसे क्रोध करने से क्या फायदा होगा, और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। और हमेशा ये समझना चाहिए कि लेट हुई है कुछ कारणवश, आउट ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसा कारण होगा, कोई ऐसी सिचुएशंस होगी, मशीन की बात है, कभी भी कमी और खामी उसमें हो सकती है, उसमें हम अपनी मत इतनी चलाए, अपना ओपिनियन, और उसके कारण हम जाकर के इतना उनसे रिलेशन बिगाड़ दे, चाहे वो अननोन व्यक्ति है तो क्या हुआ। तो रिश्ते की कदर हमेशा करनी चाहिए। दूसरा, मुझे अभी अभी याद आया कि हम लेट गो करें इन बातों को। हमारा स्वभाव, उनका स्वभाव सामने वाली व्यक्ति का, वो कोई सेम तो नहीं रहेगा। दांत हमारे अलग है, बाल हमारे अलग है, हाइट हमारी अलग है, सब कुछ हमारा अलग है। तो स्वभाव और संस्कार वो हमारे कैसे एक सरीखे होंगे कि जो हम चाहे वही सामने वाला करे। हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ तो हमें इतनी नाराजगी, इतना हम ड्राई है रिलेशन में, कोई हरा भरा रिलेशन नहीं। तो ये कमी किसकी हुई? हमारी स्वयं की ये कमी है। तो हम अपने को इम्प्रूव करें, हम अपने स्वयं में सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मेरे में किस बात की कमी है, मेरा अवगुण स्वयं का कौन सा है जो मैं खुद उसको परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं। और ये मेरी स्वयं की उन्नति के लिए, मेरे स्वयं के विकास के लिए, मेरे स्वयं की भलाई के लिए ये हम कर रहे हैं, किसी और के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कोई भी सिचुएशंस हो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सामने वालों के कंट्रोल में नहीं है, उसमें हमें रिलेशन बिगाड़ने का देखा जाए तो कोई अधिकार नहीं है। फिर भी आपके मन में बहुत ऐसा आ रहा है किसी के स्वभाव और संस्कार के लिए, तो आप उसको क्षमा भी तो दे सकते हो। आपको लगता है कि उसने मिस्टेक किया, किया कि नहीं किया वो दूसरा प्रश्न है, लेकिन हमें ऐसे अनुमान से लगता है कि उसने ये मिस्टेक किया और मेरी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, इसलिए मैं उसके ऊपर रिलेशन बिगाड़, क्रोध करके रिलेशन को हम बिगाड़ रहे हैं। तो उस समय मन में ये भाव लाइए, शुभ भाव लाइए कि मुझे उसको क्षमा करनी है। जो जैन होते हैं रिलीजियन में, उनमें एक मिच्छा में दुकड़म करके आप लोगों ने सुना होगा कि सारे साल में एक दिन आता है जिसमें एक दूसरों को कहते हैं हाथ जोड़ करके, मिच्छामी दुकड़म। अर्थात अगर सारे साल के अंदर मैंने आपको मन, वचन और कर्म से कोई भी प्रकार का दुख आपको दिया हो, तो मैं आपसे आज क्षमा मांगती हूं। ऐसा फिर वो सामने वो भी कहता है। तो क्षमा कहा जाता है विरस्य भूषणम। क्षमा देने वाली व्यक्ति वीर कही जाती है। तो हम वीर बने, ये भूषण है, और सामने वालों में एक सुंदर हैबिट रखे अपनी कि सामने वालों में मुझे अवगुण उनका देखना नहीं है। हम अपने को कई बार ऐसे होता है चाहते हुए भी चेंज नहीं करते हैं, या तो कर सकते हैं, और सामने वालों के लिए हम इतना अनुमान लगाए, इतना आशा रखे, इतना एक्सपेक्ट करें कि ये चेंज हो जाए। ये हो सकता है कभी? स्वयं के, यहां का एक बहुत सुंदर स्लोगन है कि स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो शॉर्ट में कहूंगी कि किसी के अवगुण हम ना देखें, हमारे में गुण लाए क्षमा करने का, और साथ साथ में अपने गुण हम बढ़ाए। और एक बात और कहूंगी कि रिलेशन में सबसे पहले तो मुझे खुद को बिगाड़ने से नुकसान है, यह अपने स्वयं के मन के अंदर ये हमेशा रखे। मैं एक सत्य घटना आपको जापान एयरलाइंस की बहुत साल पहले हुई थी वो बता रही हूं कि जो एरोप्लेन था काफी हाइट के ऊपर था, जापान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा था और हाइट जो ऊपर से थी वो तुरंत उसने नीचे कर दिया हाइट पायलट ने और प्लेन क्रैश हो गया। बाद में सारी बहुत इंक्वायरी किया तो पता चला कि जो पायलट थे तो उसका बहुत रिलेशन स्पॉइल था उसकी वाइफ के साथ और इसीलिए उसने स्वयं को सुसाइड करने के लिए पूरा ही एरोप्लेन ऊपर हाइट से लेकर के नीचे तुरंत लाकर के क्रैश हो गया। तो ये क्या बात है, रिलेशन की ही तो बात है कि वाइफ के साथ नहीं बनती थी, अनबनाव हो गया था तो उसका माइंड उससे बहुत बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए बहुत वैल्यू करे, बहुत सुंदर रीति से रिश्ते की कदर करे कि मेरा रिश्ता कहीं भी स्पॉइल जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान पे रखे। ओम शांति।
बहुत थैंक्स दीदी जी। दीदी जी का एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया, दीदी जी मैं आपको याद कराती हूँ, वो हाउ टू चेंज लाइफ एंड वाइफ, प्लीज आप बताइए। आप
एक एग्जाम्पल मैंने दिया था थोड़े समय पहले, लास्ट ईयर के पहले, कि अमेरिका में एक बुक इंग्लिश में लिखी गई और वो बुक का टाइटल जो था वो था हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू चेंज योर लाइफ। थोड़ी किताब थी जो प्रिंट हुई थी वो सारी सेल हो गई तो राइटर ने प्रिंटर को कहा कि ये समय क्या करते हैं, बहुत ज्यादा किताब जो है वो प्रिंट कर लो एक साथ में क्योंकि वो अच्छा रहेगा और अच्छी सी क्वांटिटी में बहुत ही वो प्रिंट कर दिया। सारी जो किताबें थी वो तुरंत सेल हो गई बहुत ही कम समय में और जो फर्स्ट टाइम बुक प्रिंट हुई थी उसको काफी समय लगा हुआ था पूरा खत्म होने में। तो राइटर ने क्या किया, प्रिंटर को फोन किया कि इतनी जल्दी सारी सेल हो गई और इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो मुझे एक बुक जो है वो आप मुझे घर में भेजिए। तो प्रिंटर ने उसको वो किताब घर में भेजी। जब वो राइटर बुक का टाइटल देखता है तो टाइटल ये था कि हाउ टू चेंज योर वाइफ, हाउ टू चेंज योर वाइफ। मना हर एक ये चाहते हैं क्यों इतना जल्दी सेल हो गई और इतनी बड़ी क्वांटिटी में क्यों सेल हो गई, इसीलिए कि हर एक ये सोचते हैं, आशा रखते हैं, एक्सपेक्ट मन में करते हैं कि पहले दूसरे जो है सामने वाले वो क्या करे, वो अपने आप में परिवर्तन लाए, वो लाएंगे, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे, तो इसलिए वो सेल हो गई थी। तो ये है सही बात। ओम शांति।
बहुत 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 शुक्रिया आदरणीय मीरा दीदी जी।
एक बात और मुझे ध्यान में आई कि वैल्यूज की सारी बात चल रही है तो कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान को कहा ओ गॉड, वो बहुत उतावलापन वाला था, बहुत जल्दीबाजी करता था हमेशा. तो वो भगवान को कहता है, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप. तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अच्छी तरह से वैल्यू की कदर करें और रिश्ते की कदर करें. ओम शांति.
थैंक यू सो मच दीदी जी. दीदी जी के लिए जोरदार तालियां. आज के इस पैनल में सभी पैनलिस्ट बहुत सुंदर सुंदर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट. मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ नीलम जी से. रिलेशनशिप एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, और क्या इस इन्वेस्टमेंट में आप सीरियसली कुछ प्रयास कर रहे हैं? आप अपना कोई अनुभव शेयर करें.
ओम शांति. रिलेशनशिप में सुधार के लिए तो उसी दिन से प्रयास शुरू हो गया था जिस दिन हमने ये इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया. बाकी ये लाइन को मैं हमेशा याद रखती हूँ कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. ये पहले मैं ज्ञान में आने से पहले सुनती थी, लेकिन इसको अजमाने की ताकत नहीं थी. लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के बाद इस कहावत को मैंने अपने जीवन में उतार लिया, और परमात्मा से थ्रू मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन बहुत पावर ली. और आज की डेट में हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों इस नॉलेज में एक साथ ही चले थे. और अब जैसे कहते हैं ना कि एक माता पिता की पालना में संस्कार भी एक जैसे हो जाते हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया. थैंक यू.
थैंक यू सो मच. तो आध्यात्मिकता से जुड़ने के बाद जब हम डेली रूटीन में कुछ स्पिरिचुअल जर्म्स को, चाहे फैमिली रिलेशन चाहे प्रोफेशनल में हम अप्लाई करते हैं, तो निश्चित जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहती है और हर रिलेशन बहुत सुंदर हार्मोनियस हो सकते हैं. अब एक लास्ट प्रश्न है आदरणीय प्रभा दीदी जी से. दीदी जी, हर व्यक्ति अपने हिसाब से प्रयास अवश्य करता है जीवन में, फिर भी हम समाज में देखते हैं कि रिलेशन है, संबंध है, पर कभी कभी वो संबंध बंधन लगता है. तो हम कौन से स्पिरिचुअल टूल्स को अपनाएं, ज्ञान की कौन सी पॉइंट को यूज करें, क्या हम अपने जीवन में, रोज के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, किन बातों को सुधार करें, प्लीज मार्गदर्शन करें.
प्रश्न बहुत अच्छा है कि संबंधों में सुधार कैसे लाएं. मैंने पहले भी कहा था कि संबंधों को निभाने के लिए आत्मा के अंदर विल पावर शक्ति चाहिए. आज क्या हो गया है, आत्मा के अंदर वो विल पावर नहीं है और संबंधों को सुधार नहीं सकते. कोई एक बात कहता है तो बात को सहन नहीं कर पाते हैं. तो परमात्मा ने हम सबको एक ही स्लोगन सिखाया है, एक ने कही दूसरे ने मानी, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है ना. तो जीवन में अगर अपने संबंधों को हमको सुधारना है तो हम एक दूसरे को रिगार्ड और रिस्पेक्ट रखें. अगर कोई कुछ कहता है तो उसको विशेष हम सुने. आज क्या है, सबसे बड़ी चीज संबंधों के अंदर क्या हुआ है, कोई भी बात कोई कहते हैं तो सुनने से पहले ही वो सुनते नहीं हैं, बल्कि उससे पहले ही उसका जवाब दे देते हैं, क्योंकि वो सहन शक्ति की कमी है. जिसके कारण क्या होता है कि हम पहले उसकी बात सुने तो सही, और उसकी बात को सुने और उसकी बात के भावार्थ को अगर हम समझेंगे तो जरूर हम उसको श्रेष्ठ रीति से चला सकेंगे. क्योंकि कहते हैं ना, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक उसका नुकसान भी होता है और उसमें फायदा भी होता है. तो आज हम सभी नुकसान पहले देख लेते हैं और फायदे को नहीं देखते हैं, तो संबंध में भी हमको निभाने हैं, क्योंकि हम संबंध के बिना रह नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं रह सकता है। आया है संसार में तो आया भी अकेला, लेकिन जाएगा भी तो अकेला नहीं जाएगा, उसको पहुंचाने के लिए भी कौन चाहिए, साथ तो चाहिए ना। तो हमारा साथ जो है, सबके साथ हमको संबंध निभाना है। ये संबंध ही हमारे श्रेष्ठ बनाने के लिए ये राजयोग है, जिससे हम अपने संबंधों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। क्योंकि संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए, और वैल्यूज जब आएंगी तो संबंध हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। परिवार में सहन शक्ति चाहिए, परिवार में स्नेह चाहिए, परिवार में एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। वो अगर हमारे अंदर है तो हम जरूर अपने संबंधों को कर सकते। जैसे हमारी मीरा दीदी ने बताया ना, क्षमा भूषण, तो कुछ क्षमा करने की शक्ति होगी तो जरूर हम अपने संबंधों को बना सके। हर एक व्यक्ति प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न को करने में सफल हो, और सफल होने के लिए उस व्यक्ति को वो चांस दिया जाए, एक दूसरे की बात को सुना जाए, सुनेंगे और सुन करके फिर उसका विचार करेंगे तो जरूर हम उनके साथ उन व्यवहार को श्रेष्ठ बना सकते हैं। परमात्मा हमको यही सिखाते हैं, इतना भी बड़े से बड़ा अगर कार्य होता है तो उस कार्य को करने के लिए अगर हमारे पास संगठन की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। जैसे कहा ना, माला कैसे बनती है, मोती तो है, लेकिन मोती जितने हैं उसको एक धागे में पिरोया जाता है तब माला कही जाती है। इसीलिए संबंधों के अंदर भी जो भी हैं वो सब प्रेम के धागे में अगर पिरोए हुए रहेंगे तो हमारे संबंध जरूर श्रेष्ठ रहेंगे। तो आज संबंधों में प्यार भी कौन सा चाहिए, आत्मिक प्यार चाहिए। जब आत्मा का प्यार होगा तो हमारे संबंध सुधर सकेंगे, और अगर प्यार में स्वार्थ आ गया तो वहां हमारे संबंध बिगड़ेंगे। तो इसीलिए आत्मिक प्यार को अपने जीवन में हमें लाना है। जितना आत्मिक प्यार हमारा बढ़ता जाएगा, हमारे संबंध भी बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत सुंदर प्रभा दीदी जी ने अपने अनुभव से हमें सुंदर शब्दों में शॉर्ट में जवाब दे दिया, जिसको कह सकते हैं संबंध को जोड़ना एक कला है और संबंध को निभाना एक साधना है। तो दीदी जी, हम इस साधना को अवश्य अपने जीवन में लाएंगे, अपनाएंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। अपनों के बिना जो बीते वो उम्र है, अपनों के बिना बीते वो उम्र है, और अपनों के साथ बीते वो जिंदगी है। तो क्यों नहीं हम अपनों के साथ जीते आ रहे हैं और जीते रहेंगे और जिंदगी को एंजॉय करेंगे। अब एक लास्ट में वाइंड अप करते हुए मैं मनु भाई जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप आध्यात्मिकता से भी जुड़े हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को कॉरपोरेट सेक्टर में अपने वर्क प्लेस पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो आप आध्यात्मिकता का कोई ऐसा अनुभव हम सबके साथ शेयर करें जिससे कि आपकी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आया हो।
ओम शांति। वंस अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पहले भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और अब जो 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 भी रिलेशंस हैं उनको और सही तरीके से रिफाइंड, पहले भी रिलेशन हम निभा रहे हैं लेकिन रिलेशन में अपग्रेडेशन, हमको नित नवा देखने को इच्छा होती है कि कुछ नया हो, कुछ श्रेष्ठ हो, जो पहले से हो रहा है उससे श्रेष्ठ हो। तो पिछले ऑफिस में जैसे हम काम कर रहे थे तो वहां हमने यूज किया इसको। यूज कैसे किया कि
किसी भी बात को अगर हमने कहना है तो उस बात को पहले हमने भगवान से कहा, अमृत वेला में भगवान से वो रिलेशन संबंध बनाया, उस संबंध को बनाकर उस संबंध को जिया। तो जब वो हम उस संबंध को जी लेते हैं तो कुछ चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती हैं, आ जाती हैं, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, देखा कुछ के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, कुछ पर नहीं पड़ा, लेकिन वही मैंने कहा ना, रुके नहीं हमने, फिर उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि अमृत वेला में ऐसा लगता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में लगता है कि भगवान कहते हैं नहीं, यही रास्ता है, यही दवाई है, दूसरी दवाई नहीं है, तो आप करते रहो। तो करते रहे, कोई तो चार दिन बाद सही रिस्पॉन्स मिला, किसी का एक महीने बाद, किसी के दो महीने बाद, पर रिस्पॉन्स सबके साथ अच्छे मिले, और एंड ऑफ द डे है कि हम उन सबके साथ आज एक परिवार की तरह रहते हैं। जिस भी कंपनी, जिस दीदी ने कहा कि हमें रिलेशंस को कहीं भी बिगाड़ना नहीं है, रिलेशंस में खटास हमको किसी से नहीं करनी है, उसमें नुकसान है, तो चुप रह के ना बोल के अगर रिलेशन सही रहता है तो जहां चुप रहना है वहां चुप रह लो, लेकिन रिलेशन खराब ना हो, क्योंकि रिलेशन जब खराब नहीं होते हैं, अगर कहीं कुछ खटास आ भी जाती है और आप बैक सीट ले लेते हैं तो एंड ऑफ द डे आप विन करते हैं उसको। अगर आपकी सहन शक्ति उस दिन काम कर गई, जो कि आपको वो भी भगवान से लेनी है, स्पिरिचुअलिज्म से ही आएगी, मन की शक्ति उसी से आएगी, क्योंकि मन सबका वीक हो गया, आत्मा वीक हो गई या मन भी वीक हो गया, तो मन अगर स्ट्रांग हो गया तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग। और दवाई एक ही है, दवा खाना भी एक है, तो इसलिए ये काम बहुत अच्छा करता है। और प्रैक्टिकली ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आज जो सारे वो फैमिली की तरह रहते हैं, जब भी मैं फ्राइडे को जनरली वो सब मुझे कॉल करते हैं कि चलो हम खाना खाने एक साथ आते हैं, उनको पता है मैं खाना नहीं खाऊंगा बाहर का, लेकिन हमारे को अच्छा कंपनी के लिए बैठ जाना हमारे साथ, तो और फिर मैं अपना खाना खुद लेके जाता हूँ, बनाता हूँ, ऑफिस में बनाता हूँ, क्योंकि छोटा सा कुकर रखा है, तो सब कहते हैं कि एक चम्मच जरूर खिलाओ हमको, कि तुम्हारे खाने से हमारी एक चम्मच तुम खाते हैं तो बड़ा ही खुशी मिलती है तुम्हारे खाने से, पता नहीं तुम बनाते तो खिचड़ी हो लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। तो रिलेशंस हैव ऑटोमेटिकली कम इन अ वेरी गुड ट्रैक, तो इसमें रिफाइनमेंट हुई है और वो रिफाइनमेंट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि जो भी कह रहा हूं ये प्रैक्टिकली बीन एग्जीक्यूटेड एंड दिस अ ट्रूथफुल एग्जाम्पल। ओम शांति।
बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल टिप्स होने के कारण हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू मनु भाई जी। अब लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय मीरा दीदी जी से, हम ये पैनल समाप्त कर रहे हैं, तो दीदी जी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हमें दें जो हम अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर पाए और हमारे रिलेशनशिप को अच्छा बना पाए। आदरणीय मीरा दीदी।
ओम शांति। एक बात मुझे इसमें याद कि हम कुछ भी किसी के साथ कभी भी हुआ तो एक तो हम उसको लेट गो करें, उसमें उदार चित बने, लेट गो करने में हम पकड़ करके अपने पास नहीं रखे। आप लोगों ने ये एग्जाम्पल भी सुना होगा कि आप एक ग्लास पकड़ करके रखो, कितना कितना समय पकड़ करके रखेंगे, 24 घंटा, 48 आवर्स, हाथ को क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा, और आप पकड़ करके रख भी नहीं सकोगे। तो ये इतनी महत्व की बात, भले सूक्ष्म बात है रिश्ते की, वो हम इतना किसी ने कुछ कर दिया तो इतना हम पकड़ करके उसको रखे। दुनिया में भी कहा जाता है कि रात गई बात गई, आप भूल जाओ उसको, क्षमा दे दो वो तो बात हो गई, लेकिन क्षमा दे करके भूल जाओ। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं, शिक्षा में ये बहुत सुंदर बात आती है, कि पास्ट इज पास्ट, हमें पास्ट की बातों को बार बार चिंतन करके उसको फिर से जिंदा बार बार नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। 80% हमारे विचार जो सारे दिन में होते हैं, 35,000 के 40,000, उसमें से सारा रिसर्च हुआ है, साइंटिस्ट साइकियाट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स के द्वारा मिलकर के, कि 80% हमारे विचार सारे दिन में जो चलते हैं उसमें से पास्ट की बातों के होते हैं। तो ये 80% बिल्कुल वेस्ट है। हमें ये सीखना है कि लाइफ को एंजॉय करना है तो हम प्रेजेंट टाइम में रहे, वर्तमान में अच्छी तरह से एंजॉय करें, वर्तमान का हम आनंद ले और प्रसन्नचित हम रहे। ये हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा। अपने आप में यह आदत हमें डालनी होगी। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा, तो बिल्कुल आप सभी कर सकोगे और वर्तमान को अच्छी तरह से क्रिएटिव बना करके एंजॉय करिए। अच्छी तरह से वर्तमान में रहिए, कोई किसी से रिलेशन बिगड़ेगा ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम शांति। और दृढ़ संकल्प लाइफ में करेंगे। एक व्यक्ति गुरु ने पूछा पांच शिष्यों को कि स्ट्रांग में स्ट्रांग चीज क्या है ये संसार के अंदर, तो एक ने कहा कि पहाड़ी, दूसरे ने कहा लोहा, तीसरे ने कहा कि अग्नि, चौथे ने कहा पानी, पांचवे ने कहा कि स्टीम। तो फिर गुरु ने कहा कि स्ट्रांग में स्ट्रांग है फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में। अगर दृढ़ संकल्प है तो लोहे की हथौड़ी बनाकर पहाड़ को तोड़ेंगे, अग्नि प्रकट करके लोहे को मेल्ट करेंगे, शीतल पानी में अग्नि को भी आप, दृढ़ संकल्प है तो क्या करेंगे, शीतल कर देंगे पानी में। और अगर दृढ़ संकल्प है तो आप स्टीम बना करके पानी को भी क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो इसलिए क्या चाहिए हमारे जीवन के अंदर, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। और परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ता सफलता की चावी है, इट इज ए की टू सक्सेस। फर्म डिटर्मिनेशन इज ए की टू सक्सेस। तो आपका जीवन उससे सफल हो जाएगा। जीवन का बेड़ा, कहावत है कि जीवन का बेड़ा आपका पार हो जाएगा। तो अभी आज यहां ही सभी उठेंगे, या जो भी सभी सुनते हैं वो इस बात का ध्यान रखे कि मुझे अभी का अभी वर्तमान में, बाद में नहीं होता, कल कल करते काल खा जाता, कहावत है, तो कल नहीं होगा, लेकिन आज इसी समय इसी क्षण हमें दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे मेरे रिश्ते बहुत ही मधुरता वाले, स्वीट रिलेशन सबके साथ रखना है। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी, आपके शब्दों के भाव हम तक पहुंच गए। कहते शब्दों का वजन तो हमारे बोलने के भाव से पता चलता है, वैसे तो दीवारों पर भी वेलकम लिखा होता है। तो दीदी जी के शब्द हमारे हृदय तक पहुंच गए। और आज इस पैनल में हम सभी ने, सभी पैनलिस्ट का जो उन्होंने अपने विचार शेयर किए अपने अनुभव के आधार से, इन सब का सार हम यही सोचते हैं। आदरणीय प्रभा दीदी और मीरा दीदी जी ने वैल्यूज की और पावर की और स्पिरिचुअलिटी की बात की, और अन्य जो हमारे पैनलिस्ट है उन्होंने भी रिलेशनशिप के लिए वैल्यूज की बात की। तो आज हम सभी मिलकर के इस पैनल में यही सबके ओर से ये सोचते हैं कि रिश्ता अर्थात आर फॉर रिस्पेक्ट, आई फॉर इंटेंशन प्योर हो, एस फॉर स्वीटनेस, H for honesty, T for trust and A for appreciation. तो क्यों नहीं इन वैल्यूज के साथ हम अपने रिश्तों को और स्ट्रेंथन करें, मजबूत बनाए, हार्मोनियस बनाए और इस जीवन को खुशहाल और सुखी, हैप्पीएस्ट बनाए. बहुत बहुत थैंक्स सभी का. ओम शांति. अभी हम सभी मेडिटेशन करके फिर उठेंगे.